अध्याय गलत फहमी की आग। जब दिल खुद से हारने लगे। मॉल की सीढ़ियों से उतरते हुए अखिल के कदम अब पहले से धीमे थे, लेकिन हल्के भी। चाबी उसकी मुट्ठी में थी। वो धातु की ठंडी ठोस वस्तु अब किसी क्लोजर की तरह लग रही थी। शालिनी की तीखी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन इस बार उसने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो अब सीधे पार्किंग की ओर बढ़ रहा था, पर तभी एक कोने से आती हल्की हंसी की आवाज़ ने उसके कानों को खींच लिया। वो पलटा और देखा, स्टोर के पीछे वाले कांच के पार रैना खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़े आराम में था और उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, लगभग 50 के आसपास, भूरी शर्ट, चश्मा लगाए और हल्का सफ़ेद बन लिए बाल। रैना उस आदमी से बात कर रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। अखिल की सांस जैसे एक पल को रुक गई। उसका चेहरा सख्त हुआ, भौहे से कुड़ी और मुट्ठी में पकड़ी चाबी फिर से कस गई। क्या अब ये इतना नीचे गिर गई है? किसी भी आदमी से इस तरह यूं मुस्कुराकर बात, इतनी आसानी से? उसके जहन में पुराने दृश्य लौटने लगे, जब रैना हर छोटी चीज के लिए उससे सवाल करती थी, जब वो अपनी इज्जत को लेकर हद से ज्यादा संवेदनशील होती थी। और अब ये वही लड़की ऐसे किसी अधेड़ के सामने यूं खिलखिलाकर बात कर रही है? उसके अंदर एक खौलती हुई जलन थी, जो हक खो चुका था फिर भी अधिकार जताना चाह रहा था। वो वहां से एक कदम और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस आदमी ने हंसते हुए रैना की ओर कुछ कागज बढ़ाया, शायद कोई डिलीवरी स्लिप या कंपनी का पेपर। रैना ने सिर झुकाकर हल्की हंसी में कुछ कहा और फिर उसके सामने से हट गई। अखिल वहीं खड़ा रहा कुछ और देर। वो आदमी कुछ देर और खड़ा रहा, फिर स्टोर से बाहर निकल गया, लेकिन रैना ने ना उसे छुआ ना उससे नज़दीकी दिखाई। पर अखिल के भीतर जो धुआं उठ चुका था वो अब तक लपटे बन चुका था। वो मुड़ा और पार्किंग की ओर बढ़ गया, कदम तेज और चेहरा कठोर। शालिनी अब तक गाड़ी से बाहर आ चुकी थी, फोन हाथ में था, चेहरा चिड़चिड़ा। फाइनली तुम्हें चाबी मिल गई? अखिल ने चाबी उसकी ओर बढ़ा दी और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब चलें? शालिनी ने पूछा। हाँ, अखिल ने गाड़ी स्टार्ट की, पर निगाहें सामने नहीं, दिमाग कहीं और था। गाड़ी मॉल की सीमा पार कर चुकी थी, लेकिन अखिल की सोच वहीं पीछे छूटे कोने में अटक गई थी। कौन था वो आदमी और रैना, वो क्यों मुस्कुरा रही थी? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके सामने खड़ा है? शालिनी बीच बीच में कुछ कहती रही, लेकिन अखिल के कान अब किसी और आवाज की तलाश में थे, रैना की, उसकी सफाई की, शायद उसके कहे गए किसी अधूरे शब्द की। उधर मॉल के भीतर रैना ने अपने काउंटर पर वापस लौटते हुए सिर झटक दिया। क्या सोच रही हो रैना, खुद से कहा उसने। दरअसल वो आदमी उसकी दुकान की सीनियर ब्रांच हेड का पति था, जो एक प्रोजेक्ट के लिए उनकी टीम को विश कर रहा था। हल्के फुल्के मजाक में उसने पूछा था, कभी हमारे ऑफिस आओ, वहां भी ऐसे ही सलीके से काम करने वाली लड़की चाहिए। रैना ने हंसकर जवाब दिया था, सर फिलहाल तो इसी मॉल की दीवारें काफी बड़ी लगती हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि दूर खड़ा कोई उसकी उस हंसी में गिरावट ढूंढ लेगा। रात में अखिल और शालिनी एक कैफे में थे। शालिनी मोबाइल में खोई हुई थी और अखिल की कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी। क्या मैंने वाकई उसे कभी समझा, या मैंने उसे एक सांचे में ढालना चाहा और जब वो नहीं ढली उसे तोड़ दिया? मन का द्वंद्व अब और गहरा था। शब्द नहीं थे, लेकिन आंखों में रैना की मुस्कान अब भी घूम रही थी। एक अजीब सी हार, उससे भी गहरी जलन, जो सिर्फ किसी से अलग होने से नहीं बल्कि उसके आगे बढ़ जाने से होती है। उधर रात में रैना अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। आज की ड्यूटी लंबी रही, लेकिन अंदर कहीं एक सुकून था, शायद इसलिए कि उसने खुद को टूटने नहीं दिया, शायद इसलिए कि आज भी जब कोई उसके काम की तारीफ करता है तो वो मुस्कुराना नहीं भूलती। उसे नहीं पता कि कोई उसके उस एक पल को कैसे देख रहा है, लेकिन उसे अब फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई और तुम्हारे किरदार को तुम्हारी चुप्पी से आंकने लगे तो जवाब देना जरूरी नहीं होता, मुस्कुराना काफी होता है।